صفحہ نمبر 100، لزم رہے، کیونکہ میرے مقاصد بالکل واضح تھے، اس لیے جب میں اپنے اسکول کے دفتر گئی اور ان سے امتحانی جوابی صفحے کا پرنٹ نکالنے کا کہا تو انہوں نے کہا، آپ نے تو بس ابھی شروعات ہی کی ہے، جوابی صفحہ کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا، نہیں، مجھے ایک کورا کاغذ چاہیے۔ انہوں نے اسے میرے نام کے ساتھ پرنٹ کر دیا اور میں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور اس پر اپنے نمبر لکھے۔ میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کہ یہ مستقبل میں پہلے سے موجود ہیں۔ مجھے محض اسے جاننے کی ضرورت تھی۔ جب میں نے اپنا ہوم ورک کیا تو میں نے اس کاغذ کو باہر نکالا جس پر میرے نمبر لکھے تھے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ حاصل کروں گی، اور انہیں ایک طرف رکھا تاکہ میں انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ سکوں۔ میں نے در حقیقت ایک ایسے احساس کے ساتھ کام کیا جیسا کہ یہ پہلے سے ہی کہیں نہ کہیں ہو چکا تھا۔ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی صورتحال کے لیے تخیل کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ امتحانات، انٹرویو، کسی میٹنگ، کسی تجویز، تقریر، اپنے سسرالیوں سے ملاقات یا کسی دورے کے نتیجے کو تصور کر سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ کا باس آپ کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کرنے لگا ہے جو کمپنی کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنا لیں کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ اس سال کے اختتام پر کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہر نئے سال کے آغاز پر پورے سال کو تصور کریں۔ مزید برآں، ایک بڑا تصور تخلیق کریں کہ آپ اب سے 5 سال بعد کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بس دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ تصور کرنا ہوگا کہ آپ آگے کہاں جانا چاہتے ہیں اور اسے اپنی نظر میں بالکل واضح کر لیں۔ ان مناظر کی تصویر کشی کریں جہاں آپ اگلے چند سالوں میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ سارا بیلیکلی، اسپینکس کی بانی، جان پال ڈی جوریا، جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں اپنی پوری توجہ خود پر مرکوز کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں، میں ٹی وی نہیں لگاتا، میں کافی کا کپ نہیں پیتا، میں کوئی بھی کام نہیں کرتا، میں وہاں صرف اپنے بستر میں بیٹھتا ہوں، کوئی فیصلہ سازی نہیں کرتا، کوئی فون کال نہیں کرتا، صرف 5 منٹ کے لیے میں کوشش کر کے اپنا ذہن ارد گرد کی سوچوں سے آزاد کرتا ہوں کہ میں ابھی یہیں پر موجود ہوں۔ اس طریقے سے آپ کا ذہن آگے بڑھتا ہے اور دن کے دوران بے تکی سوچوں سے آزاد رہتا ہے، اور اگر آپ کا کوئی خواب ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آخری 2 منٹ میں اس بارے میں تھوڑا سا سوچیں گے کہ آپ کتنا چاہتے ہیں، اسے کیوں چاہتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اس کے قریب پہنچنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ جب آپ دن کی شروعات ہونے سے پہلے ہی اس کی بے چینی کو ختم کر ڈالیں گے اور اپنے ذہن کو مکمل طور پر پرسکون حالت میں لے آئیں گے تو آپ کے خواب کا تصور آسانی سے آپ کے لاشعور میں چلا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نیا پروگرام کرنے کے لیے کمپیوٹر کو بند کیا جائے۔ نیا پروگرام کمپیوٹر میں اس وقت تک انسٹال نہیں ہو سکتا جب اس میں بہت سے دوسرے پروگرام چل رہے ہوں، اور اسی طرح سے آپ کا لاشعور تصورات کو وصول نہیں کر سکتا اگر آپ کے ذہن میں دوسری چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے ذہن کو پرسکون حالت میں لے جا کر باقی چیزوں سے آزاد کرتے ہیں تو آپ کا تصور کامیابی کے ساتھ اس میں انسٹال ہو جائے گا۔ جب آپ کامیابی سے تصور کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کے لوگ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اچانک سے تمام تر چیزیں آپ کے رستے پر چل رہی ہیں اور ہر چیز آپ کے لیے اس طرح سے کام کر رہی ہے جیسے آپ کوئی خاص انسان ہیں، اور آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ ایک نہایت ہی سادہ مگر طاقتور خصوصیت کا استعمال کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ پیدا ہوئے تھے اور جو اس کائنات میں موجود ہر انسان کے پاس دستیاب ہے۔ सफ़ा नंबर 103, एक हीरो की सोच। पीटर बर्वाश। आप सुबह उठते हैं और आप एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। ये इन कपड़ों के मुतल्लक नहीं है जो आप पहनने जा रहे हैं। ये इसके मुतल्लक नहीं है कि आप अपने बालों को कैसा बनाने लगे हैं, बल्कि ये है कि आज आप एक अच्छा रवैया अपनाएंगे या फिर एक बुरा रवैया अपनाएंगे, क्योंकि मुसबत रवैया अशद ज़रूरी है। माइकल एक्टन स्मिथ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं फितरी तौर पर एक पुरअमीद शख्स हूँ, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरी बेहद मदद करता है। सबसे मुश्किल चीज़ों में एक इंसान का रवैया है जिसके साथ वो मुकाबला करता है। जब आप ये बात समझ जाएंगे कि जब तक आप एक मुसबत रवैये को अख्तियार नहीं करते, आप अपनी ही कामयाबी को रोक देंगे, अपने लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे और जानबूझकर खुद को बीमार कर लेंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी को उम्मीद भरी नज़रों से देखने का इंतखाब करेंगे। आपका रवैया आपका अपना बनाया हुआ है, और ये आपके काम को उल्टा भी सकता है, या फिर ये आपका सबसे ताकतवर हथियार भी हो सकता है। लाइन बिचली। अगर आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप इन तरीकों को बदलना चाहते हैं जिनका आप इस वक्त तजर्बा कर रहे हैं, तो फिर आप अपने तसव्वुरात की जिम्मेदारी कबूल करना सीखें। आपके तसव्वुरात ही आपका रवैया बनाते हैं, और इसलिए अपने रवैये को बदलने की तरफ पहला कदम अपने तसव्वुरात की जिम्मेदारी कबूल करना है। जब आप ये समझ सकेंगे और कबूल कर सकेंगे कि ये तसव्वुरात ही हैं जो आप सोच रहे हैं, जो आपको मुसीबत ज़दा महसूस करवा रहे हैं, तो फिर आप अपने सोच के अंदाज़ को बदलना शुरू कर देंगे। अगर कोई आपको इस चीज़ के बदले में आपको आपके ख्वाबों का जहां पेश करे कि आप एक दिन में इतनी अच्छी चीज़ें तलाश करें जितनी के आप कर सकते हैं, तो आप इसे एकदम से कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने ख्वाबों की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। पेट कैरोल। अपनी ज़िंदगी में मैंने ये जाना है कि मुसबत अंदाज में सोचना और पुरअमीद अंदाज में जीना कामयाबी और वो चीज़ें तख्लीक करने का बेहतरीन रास्ता है जो आप चाहते हैं। अगर आप अपना रवैया तश्कील देने के लिए दुनिया के ज़ाहरी हालात देखते हैं, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इससे आपके इर्द गिर्द मौजूद हर तरह के हालात को साजगार होना होगा, ताकि आप मुसबत रवैया अख्तियार कर सकें, और आप हर तरह के हालात को काबू नहीं कर सकते। इसी तरीके से बहुत से लोगों को हर वक्त अच्छे अंदाज में रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी, और आप अपने अलावा किसी को भी काबू नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको वाकिया ही दुनिया के 7 अरब लोगों को इस सांचे में डालने की ज़रूरत होगी जो आप चाहते हैं, ताकि आप पुरअमीद और मुसबत रवैया अपना सकें। आप फ़कत इस बात की निशानदही करने के लिए आप किस किस्म का रवैया अपनाएंगे बरूनी हालात नहीं देख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप हमेशा ऐसे हालात या कोई ऐसा शख्स ही पाएंगे जो आपको मनफी रवैया अपनाए रखने की कोई ना कोई वजह बताएगा। अपना सबसे ताकतवर हथियार पाने के लिए आपके रवैये की आपके अपने अंदर से निशानदेही होगी। माइंस्टेन किप। मैं बदतरीन हालात में भी पुरअमीद होता हूँ। पीटर बर्वाश। हर चीज़ का मुसबत और मनफी पहलू होता है। आप पूरी दुनिया में हर तरह की सूरत हाल में दोनों तलाश कर सकते हैं। कामयाब सिर्फ वही शख्स होता है जो चीज़ों को पहले मुसबत अंदाज में देखने के काबिल होता है। आपके पास इस चीज़ का इंतखाब करने की मुकम्मल आज़ादी है कि आप पुरअमीद शख्स बनना चाहते हैं या एक दकियानूस शख्स बनना चाहते हैं। आप अपने पुराने रवैये को कपड़ों की तरह उतार कर फेंक सकते हैं, और हर नए दिन के आगाज़ पर एक ज़बरदस्त और मुनफरद रवैया अपना सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। सफ़ा नंबर 106, कुछ अच्छा होने वाला है। पैट करोल। मेरी माँ हमेशा कहती है कि कोई अच्छी चीज़ होने को है, मुझे ये बात ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी इसी सोच के साथ गुजारी है कि चीज़ें चाहे कितनी ही मनफी या मुश्किल बन चुकी हैं, यहाँ एक मुसलसल उम्मीद मौजूद है कि ये सब बदलने वाला है। मेरी माँ ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है, ये मुझे मुसबत रखता है और मुझे हमेशा पुरउम्मीद अंदाज में आगे की तरफ देखने के लिए रुआं दुआं रखता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी इस सोच के साथ गुजारी। दुनिया के दोगलेपन की वजह से यहाँ हमेशा से मुसबत और मनफी दोनों तरह की चीज़ें मिल चलती हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल अच्छाई तलाश करेंगे और बाहर के हालात के बावजूद एक मुसबत रवैया अपनाएंगे तो आप फतह हासिल करेंगे। आपकी मुसबत रवैया अख्तियार करने में मदद करने के लिए पैट करोल की माँ के अल्फाज से बेहतरीन अल्फाज मौजूद नहीं हैं, कोई अच्छी चीज़ होने को है। अगर आपको हमेशा ये मालूम हो कि कोई अच्छी चीज़ होने को है तो आपकी उम्मीद कभी कम ना होगी। GM राव, मेरी रूहानियत मेरी मुसबत अंदाज में सोचने में मदद करती है, हत्ता कि इस वक्त भी जब चीज़ें बिल्कुल तारीख दिखाई देती हैं। जो लोग कामयाब और खुश हैं वो अच्छी चीज़ों के मुतल्लिक ज़्यादा सोचते हैं जो हो सकती हैं, वो मज़ीद खुशी और दौलत हासिल करने और एक भरपूर और मानी खेज ज़िंदगी को वजूद में लाने के मुतल्लिक सोचते हैं, ना कि इसके बरक्स काम करते हैं। GM राव, मैं ऐसे बहुत से दौलतमंद घरानों से तल्लक रखने वाले आला तलीम याफ्ता और ऊंचे तबके के लोगों से मिला हूँ जो अपने मनफी रवैयों की वजह से कामयाब नहीं हो सके। मनफियत एक शख्स को नाकाम बना देती है। ज़िंदगी के मुतलक दकियानूसी रवैये का मतलब एक बदहाल ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी में किसी नुक्ते पर आपको एक ऐसे शख्स से मिलते हुए कोई शुबा ना होगा जो हर चीज़ के मुतलक नाउम्मीद है, और जब आप इसका साथ होंगे तो वो आपसे आपकी तवानाई और खुशी छीन लेगा। ये एक बिल्कुल दुरुस्त वजाहत पेश की गई है कि एक दकियानूस रवैया आपके साथ क्या करता है। अनास्ताजिया सोवर, अगर आप एक नौमित शख्स हैं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं तो ये आपके हर ख्वाब को ख़त्म कर डालेगा। दूसरी तरफ मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते होंगे जो हर वक्त पुरउम्मीद होता है और ज़िंदगी की तरफ इसका रवैया बहुत ही रोशन और मसरूर है। जब आप इसके साथ होते हैं तो आप इंतहाई मसरूर और ज़िंदगी से भरपूर हो महसूस करते हैं। पुरउम्मीद रवैया आपके साथ यही सब करता है। मुझे कोई भी मायूस शख्स दिखाएं जो अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में बेइंतहा खुश हो, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हत्ता के अगर इसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है, फिर भी इसे पानी का गिलास आधा खाली ही दिखाई देगा। पीटर बर्वाश, दो लोग साथ साथ रहते हैं और एक शख्स सुबह उठता है और खिड़कियां खोलता है और कहता है सुबह खैर खुदाया, और अगले ही दरवाज़े पर दूसरा शख्स एक कनौती कहता है ऐ खुदा अच्छा है सुबह हो गई। सिर्फ आप अपने आप से पूछें कि क्या इल्ज़ाम तराशी और शिकायत एक शख्स की ज़िंदगी को कामयाबी और खुशियों में बदल सकती है। क्या आप सोचते हैं कि तनकीद एक शख्स के ख्वाब पूरे कर सकती है और इन्हीं कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी दे सकती है। पैट करोल, एक असूल ऐसा है जो हमारे हर प्रोग्राम में हमेशा लागू होता है, कोई रोना धोना नहीं, कोई शिकायत नहीं और कोई बहाना नहीं। ये सोच के वो जाविये हैं नहीं हैं जो मदद करते हैं, ये हमें वहाँ बिल्कुल भी नहीं लेकर जाते जहाँ हम जाना चाहते हैं। क्या आपने कभी एक फोकल बशर इंसान को रोते हुए देखा? क्या आपने कभी इंडियाना जोन्स को शिकायत करते देखा? क्या आपने कभी जेम्स बॉन्ड को अपनी ज़िंदगी के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते देखा है? क्या आप कभी भी फिल्मी हीरो को इस किस्म की चीज़ों का शिकार नहीं देखेंगे? क्योंकि फिल्म बनाने वाले ये जानते हैं कि एक हीरो फौरी तौर पर आपकी आंखों में हकीर बन जाएगा और वो एक हीरो नहीं रहेगा। और नाज़रीन ये महसूस करेंगे कि कोई गलती थी, इतना मनफी शख्स एक हीरो कैसे हो सकता है, और जवाब ये है कि नहीं, वो नहीं हो सकता। अल्ज़ाम तराशी, हसद, रोना धोना और शिकायत हमारे बनाए हुए बहाने हैं जो हम इस वक्त बनाते हैं जब हम वो ज़िंदगी नहीं जी रहे होते जो हम जीने के लिए यहाँ आए हैं। लिज मरे, एक इंसान के रूप में हम अपने तारीख लम्हे में गुस्सा और अल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में गुस्सा और अल्ज़ाम तराशी एक दूसरे के चचाजात भाई हैं, या तकरीबन वही हैं जो आपके पास है और जिस चीज़ की आपको कमी है, और कौन है जो आपकी ये कमी दूर कर सके। मैं इस सोच के साथ बड़ी हुई हूँ कि किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, ये समझ जाए कि आपके पास जो कुछ भी है वो आपको अता किया गया है, क्योंकि ये इतनी ही आसानी से नज़रों से ओझल भी हो सकता है। ये अच्छा रवैया अपनाना ही बेहतर है, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखते हैं जो अल्ज़ाम तराशी, गुस्सा, रोना, बसोरना और शिकायत करते हैं। हम गलत तासर हासिल कर सकते हैं कि ये ठीक है और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर ये तमाम तर मनफी एहसास आपको खा जाएंगे और आपको बेताकत कर देंगे जब तक कि आप मायूसी ना महसूस कर लें। इन एहसास में से कोई भी कभी भी आपको खुशी नहीं देगा जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। इनमें से कोई भी एहसास आपकी आपके ख्वाबों की तरफ रहनुमाई नहीं करेगा। इनमें से कोई भी एक हीरो के लिए मौजू नहीं है जो कि आप हैं। लेयर्ड मेल्टन, ये चीज़ नामुमकिन है कि आप हर वक्त खुश व खरम, पुर मसर्रत और मुस्कुराते रहें और हर वक्त हर चीज़ बिल्कुल दुरुस्त जारी हो। या हसद भी होगा या बुख्स भी होगा, ये तमाम तर मनफी चीज़ें हर वक्त रूनमा होती हैं। ये इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, लेकिन क्या आप इन्हीं फलने फूलने के लिए जगह फराहम करते हैं या इन्हीं बाहर धकेल कर इसे मुसबत चीज़ों से भर देते हैं? आप अपना ज़्यादातर वक्त किस चीज़ को करने, सोचने और बोलने में गुजारते हैं? आपके लिए यही नतीजा निकलने जा रहा है। एक मुसबत और पुरउम्मीद रवैये का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप पर कभी भी उदास दिन नहीं आएंगे। आप पर कुछ परेशानी के दिन भी आएंगे, ये वक्ती अफसरदा दिनों के मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि आप अपने मुसबत और पुरउम्मीद रवैये की वजह से अपनी ज़िंदगी के 24,869 हसीन दिनों में से कितने दिनों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। पेट करोल, हर दिन एक पुरसकून जहन के साथ काम करने की कोशिश करें, एक ऐसे जहन के साथ नहीं जो हमेशा ही क्यास अराई करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आप काबिले कदर हैं या नहीं। मनफी सोचें इसी तरह की होती हैं, मैं नहीं जानता कि मैं ये संभाल सकता हूँ या नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, माजी में मैं यहाँ वहाँ गलतियों से दो चार रहा। ये सोचें तर्क कर दें और ये सोच रखें कि आप बासलाहियत हैं। हम मुमकिन तौर पर इन ख्यालात को अपने साथ रखते हैं और इन ख्यालात के बायस इतने बेहतरीन शख्स नहीं बन सकते जितने के हम बन सकते हैं। लाइन बेचली, इस बात से आगाह रहें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके आते हैं जब आप मनफी महसूस करते हैं, आप अफसरदा महसूस करते हैं या आप थका हारा महसूस करते हैं, और ये सबसे अहम चीज़ जो आप कर सकते हैं वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करना है, इस बात को तस्लीम करना है कि इन एहसास को आपकी सोच के रास्ते से हट जाना चाहिए और अपने मौजूदा हालात को बदलने के लिए किसी मुख्तलिफ चीज़ का इंतखाब करें। अगर आप अफसरदा महसूस कर रहे हैं तो फिर कुछ ऐसा करें जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं और जो आपकी खुशी को दोबाला करता है। किसी बेहतरीन चीज़ के मतलब सोचें जो आप इसी लम्हे कर सकते हैं, जिससे आप मुमकिन तौर पर अच्छा महसूस कर सकें और इसे कर डालें। لائن بیچلی، خود کو مثبت اور پر مسرت محسوس کروانے کے لیے سب سے پہلے مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جو مجھے پسند ہے، اور اپنی ذات میں ایک اطمینان کی صورتحال پیدا کرنا ہوگی۔ اسی لیے میں ہر دن سرفنگ، لہروں پر تختہ الٹنے کا ایک کھیل کرنے جاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس سے میں پر مسرت اور پرسکون محسوس کرتی ہوں۔ ایک ہیرو کا ذہن غالباً مثبت ذہن ہوتا ہے، ایک ہیرو کا رویہ مسلسل پر امید ہوتا ہے۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک مثبت ذہن اور ایک پر امید رویہ مل کر حیرت انگیز طور پر طاقتور ہتھیار بنتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ اور رویہ آپ کی زندگی بن جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 113، ایک ہیرو کا دل، حوصلہ، لیئرڈ ہیملٹن۔ خوف ہم میں سے ہمیشہ سے موجود ایک جذبہ ہے، جو چیز ہمیں ترقی دیتی ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ لز مرے، آپ خوف سے کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ خوف ایک نفسیاتی رد عمل ہے۔ آپ کسی کو ایک مشین کے ساتھ لٹکا سکتے ہیں اور آپ اس کے خوف کے رد عمل کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ خوف دکھائی دے گا۔ تاہم ہم سب ایک شخصیت رکھتے ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور اسی لیے ہم میں سے ہر ایک انسان ہر طرح کے انسانی جذبات سے بھرپور ہے، جیسا کہ خوف، عدم اعتماد، شکوک و شبہات، خوشی، جوش و جذبہ، امید اور یقین۔ ہیرو بننے کے اس سفر میں آپ مختلف اوقات پر ہر طرح کے جذبات کا تجربہ کریں گے۔ صرف اس لیے کہ ایک شخص کامیاب ہے، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اس نے خوف، عدم اعتماد اور شکوک و شبہات جیسے احساسات کا تجربہ نہیں کیا۔ ان کے اندر بھی اتنا ہی خوف ہے جتنا کہ آپ کے اندر، ان کے اندر بھی اتنے ہی شکوک و شبہات ہیں جتنے کہ آپ کے اندر۔ ایک کامیاب شخص محض ان جذبات کو محسوس کرنے کے باوجود اپنے خوابوں کی پیروی کرنا جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے خوف یا شکوک و شبہات کو خود کو معذور کرنے یا اپنے خواب کو حاصل کرنے سے روکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ منسٹن کپ، چاہے آپ کا خواب بڑا ہے یا یہ صرف ایک چھوٹا سا خواب ہے، یہ ابھی بھی آپ کی حالت اطمینان سے باہر موجود ہے، اور آپ کی حالت اطمینان سے باہر نکلنا خوف کے مساوی ہے۔ لیکن خوف کو انسانی ارتقاء سے ہی غلط سمجھا گیا ہے۔ حیاتیاتی نقطہ نظر سے خوف ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ خوف ہماری ذات کی حفاظت کرتا ہے۔ بطور انسان ہم دو طرح کا خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا نفسیاتی وجدان یہ ہے کہ اپنی بقا کی حفاظت کرنا نفسیاتی خوف کی مانند نہیں ہے۔ نفسیاتی خوف وہ ہے جو ہم اپنے ہی ذہنوں میں تخلیق کرتے ہیں، جبکہ ہماری بقا کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ آپ نے شاید اس قسم کے خوف کا سامنا کیا ہو، شاید اس وقت جب آپ اپنا آخری امتحان دے رہے تھے، جب آپ یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کا مستقبل اس پر منحصر ہے، یا پھر جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے ٹیسٹ دے رہے تھے۔ آپ نے شاید اس وقت نفسیاتی خوف محسوس کیا ہو جب آپ نے اپنے اسکول میں منعقدہ کھیلوں میں مقابلہ کیا، یا جب آپ کو بہت سے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کرنا تھی۔ ان تمام طرح کی صورتحال میں آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ جو خوف آپ نے محسوس کیا وہ نفسیاتی تھا، آپ کے اپنے ذہن کا تخلیق کردہ تھا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے ہیرو بننے کے سفر میں صرف نفسیاتی خوف ہی محسوس کریں گے، لیکن کچھ لوگ، جیسے کہ وہ کھلاڑی جو ایک شدید کھیل کھیل رہا ہے، شاید ایک ہی وقت میں دونوں طرح کے خوف کا سامنا کرے۔ لیئرڈ ہیملٹن، لوگ کہتے ہیں آپ ڈرتے نہیں ہیں، در حقیقت ایسا نہیں ہے، میں ہی سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، میں ان بڑی لہروں سے ڈرتا ہوں، لیکن آپ کے تصورات ہمیشہ حقیقت سے بڑے ہوتے ہیں۔ خود کو ان چیزوں کی زد میں لے آنا जिनसे आप खौफ खाते हैं, गलबन इसका आदी होना ही इस पर काबू पाने का बेहतरीन रास्ता है, और एकदम से ही इसमें वो ताकत नहीं रहेगी जो इसमें पहले थी। ख्याली फिल्मों में आप देखते हैं कि हीरो मुंह से आग निकालने वाले ड्रैगन या भूतों का सामना करता है, जिसे अपनी जस्तजू मुकम्मल करने के लिए इसे हर हाल में मार गिराना होता है। फिल्मों में हीरो की जस्तजू हमारी जिंदगी की नुमाइंदगी करती है, और ये कि हमें अपना ख्वाब पूरा करने के लिए क्या कुछ झेलना पड़ता है। भूत हमारे अपने ही जहन के खौफ और शकुक को शुभात हैं, और फिल्मों की तरह हमें इन पर काबू पाना है ताकि वो हमें हमारा ख्वाब पूरा करने से ना रोक सकें। कोई ऐसा काम करना जो कि दुश्वारियों भरा है, खौफ और शकुक को शुभात के भूतों और आग उगलने वाले ड्रैगन को मारने की मानद है। माइंस्टेन की, अगर आप एक बेखौफ जिंदगी जीना चाहते हैं तो कभी भी अपने आराम को ना छोड़ें। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर बिल आखिर तरक्की ही आपको खुश कर सकती है, और आपको अपने आराम से बाहर निकलना होगा। लिहाजा हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर मैं खौफज़दा हूँ तो ये एक अच्छी चीज़ है। जब आप खौफ के बावजूद अपने आराम को पीछे कर देते हैं तो खौफ की आप पर गिरफ्त कमज़ोर हो जाती है और आपका हौसला बढ़ जाता है। लफ्ज़ कर्ज एक फ्रांसीसी लफ्ज़ कोर से निकला है, जिसका मतलब दिल है। जब आप आगे बढ़ते और खौफ महसूस करने के बावजूद कोई काम सर अंजाम देते हैं तो आपके दिल में हौसला बढ़ता है। आप इस तरह से अपना हौसला बढ़ाते हैं। यहाँ और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ आप अमल से पहले हौसला हासिल कर लें। हिम्मत जोखिम भरा काम करने से आती है। जैसे जैसे आप अपना हौसला बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि जिन चीज़ों से कभी आप खौफ खाते थे वो अब इतनी खौफजदा महसूस नहीं होती। लाइन बिचली, अगर आप में एक मकसद का तय्यन करने और इसका ताकब करने और इसे हासिल करने का हौसला है तो आप हर दिन अपने आराम से बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये कामयाबी हासिल करने का एक अहम तरीन हिस्सा है कि आप अपने आराम से बाहर निकलने के लिए हौसले और जुर्रत का मुजाहरा करें। माइंस्टीन की, ये एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम फील द फेयर एंड डू इट एनीवे है। मैंने इसका नाम पढ़ा, मुझे पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ी, मैं इसे समझ गया। ये एक बेहतरीन नसीहत थी। माइकल एक्टन स्मिथ, मैं अब भी खौफ महसूस करता हूँ। सैकड़ों लोगों के सामने खड़े होकर तकरीर करना ज़रा खौफ दिलाता है। किसी ऐसे शख्स से पहली बार मिलने से डर लगता है जिसकी आप इज्जत करते हैं, लेकिन दर हकीकत आप इसी सूरत में आगे बढ़ते, तरक्की करते और अपने ख्वाबों के करीब पहुंचते हैं जब आप खुद को इन खतरनाक सूरत हाल से दो चार करते हैं। क्या ये रोज़ वैलट ही था जिसने कहा, हर दिन एक ऐसी चीज़ करें जिससे आपको डर लगता है? मुझे वो फलसफी बेहद पसंद है। तैयारी आपके खौफ को कम कर देती है। आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि एक टेस्ट, इम्तिहान या तकरीर से पहले आप जितना ज़्यादा तैयार होंगे, आप इतना ही कम खौफ महसूस करेंगे। जब आप अपने ज़हन को किसी चीज़ के लिए तैयार करते हैं तो आप नतीजे को तसव्वुर करके इस खौफ पर काबू पाने के बहुत करीब होते हैं। आप इस खौफ को कम कर लेंगे जो आप महसूस करते हैं। आप शायद ये भी जान जाएं कि वो लम्हा जब आप एक जोखिम भरा काम करना शुरू करते हैं तो खौफ फौरी तौर पर गायब हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे कई बार सच साबित होते देखा है कि किसी काम को करने का खौफ हकीकत में इस काम को करने की निस्बत कहीं ज़्यादा है। जब आप तखील की मशक कर रहे होंगे तो आपका हतमी इनाम वही नतीजा होगा जिसे आपने तसव्वुर किया। सफ़ा नंबर 118। खतरात मोल लेना। जब हमने दी सीक्रेट फिल्म बनाई तो मैंने अपना पेशा, अपनी कंपनी, घर, अपनी साख और हर चीज़ जिसके लिए मैं काम करती थी दांव पर रख दी। लेकिन मैंने एक दफ़ा भी इसे खतरा नहीं समझा। मैं जानती थी कि मेरा ख्वाब सच साबित होगा। जी एम राव, मैंने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए हर चीज़ दांव पर लगा दी। आखिरकार जो कुछ मेरे पास था ये इससे 25 गुना ज़्यादा बड़ी सरमायाकारी थी। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने ख्वाबों को हासिल नहीं कर सकूंगा। मैंने हमेशा से अपने जहन में बहुत कुछ हासिल करने का सोचकर काम किया। माइकल एक्टन स्मिथ, खतरा मोल लेना बहुत ज़रूरी है। जंगली जानवरों का खतरा नहीं बल्कि किस्मत आजमाई का खतरा, जहां आप ये नहीं जानते कि नतीजा क्या निकलने वाला है, लेकिन आप पुरइत्माद हैं कि बाजी आपकी होगी। कारोबार में मेरा फलसफा छोटी मोटी शर्तें लगाना है, और अगर कोई काम कर जाती है तो हम इससे मजीद फायदा उठाते हैं, और अगर ये काम नहीं करती तो हम इसे बरतरफ कर देते हैं और दोबारा कुरा अंदाजी की तरफ वापस चले जाते हैं। अनास्ताजिया सोवर, ये बिल्कुल खौफनाक है, लेकिन मैं खतरात मोल लेती हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में खतरा मोल नहीं लेते तो नंबर एक, आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने मजबूत हैं। नंबर दो, आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। हीरो बनने के इस सफ़र में आप पर कई ऐसे लम्हात आएंगे जब आपको खतरा मोल लेना होगा। आप डरे हुए हैं, लेकिन आप ये महसूस करते हैं कि ये कदम उठाना दुरुस्त है, तो आगे बढ़ें और कदम उठाएं। ताहम अगर आप खौफजदा हैं और इसके मतलब किसी किस्म के शक व शुबा में मुबतला हैं कि क्या ये कदम उठाना दुरुस्त है या नहीं, तो ये कदम मत उठाएं। जब तक आप मुकम्मल तौर पर इस बात का इत्मीनान नहीं कर लेते कि किस तरफ जाया जाए, शक व शुबा की हालत में कोई काम ना करें। पेट करोल, मैं यूएससी में था और मैंने अपनी ज़िंदगी का 9 साल का लंबा अरसा यहाँ गुजारा। हम एक बड़े पैमाने पर जीते और बहुत से रिकॉर्ड कायम किए। फिर मुझे एनएफएल जाने और इन बेहतरीन लम्हात को पीछे छोड़ने का एक मौका मिला जो मैंने यहाँ से हासिल किए थे। ये सबसे बड़ा खतरा था जो मैंने पहले कभी मोल नहीं लिया था, क्योंकि मैंने इसे चलते हुए थाम लिया। मैंने इससे काम लिया, लेकिन ये मुकाबला करने और कुछ हासिल करने का एक गैर मामूली मौका था, जब दांव पर बहुत कुछ लगा और मुश्किलात पहले से बड़ी थीं। सफ़ा नंबर 120, शुक्रगुजार दिल। जी एम राव, शुक्रगुजारी अपने ख्वाबों तक पहुंचने की कुंजी है। इस चीज़ की शुक्रगुजारी जो कुछ एक शख्स के पास है और जो कुछ इसे मिलेगा, ये मुसबत सोच की तरफ पहला कदम है। ये एक ऐसा एहसास है कि दुनिया में सब कुछ ठीक है जो हमें कायनात की नेमतों को हासिल करने के काबिल बनाता है। हीरो बनने के इस सफ़र में शुक्रगुजारी बहुत अहम है। ये एक बहुत ही सादा सी खसूसियत है, लेकिन ये बे इंतहा ताकतवर है। आपके हीरो बनने के सफ़र को हमवार मगर तेज़ रफ्तार बनाने का तजर्बा करने का रास्ता शुक्रगुजारी है, और वो मौजजाना हालात जो हमें कहीं नहीं दिखाई देते वो आपकी झोली में आ गिरेंगे। लाइन बिचली, मैं शुक्रगुजारी पर बेहद यकीन रखने वाला शख्स हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ को मंजरे आम पर ले आती है और ये आपको अपने मौजूदा लम्हे को जीने के काबिल बनाती है। ये इस कदर हैरान कन है कि जब आप शुक्र अदा करते हैं तो कायनात आपको मज़ीद खुशी और शुक्रगुजारी फराहम करना शुरू कर देती है। अनास्ताजिया सोवर, सुबह उठें और अपनी नेमतों का शुक्र अदा करें कि आप सेहतमंद हैं, आप चल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं। आप शुक्रगुजारी से हर तरफ से मुश्किल दिखाई देने वाली सूरत हाल, जैसे कि चैलेंजेस, रुकावटों और मुख्तलिफ मसाइल को कम कर सकते हैं और इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप किसी मसले का सामना कर रहे हैं या आप इस दहाने पर पहुंच चुके हैं कि आप बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख सकते, तो
تو شکر گزاری کا عمل رستے کو آسان بنا دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی شکر گزاری نے آپ کو کائنات سے ایک فری پاس لے کر دیا ہے، جس نے آپ کو ہر مشکل پر قابو پانے کے قابل بنایا ہے۔ آپ اچانک ہی دیکھیں گے کہ جس مشکل کا آپ سامنا کر رہے تھے وہ کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، اور آپ کا آگے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے، یا پھر آپ مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے اور ساتھ ساتھ مسئلے پر قابو بھی پائیں گے۔ پیٹر فو یو، آپ کے ہر کام میں شکر گزاری کو سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ آپ کو سب سے پہلے یہاں موجود ہونے کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ مثبت چیزیں ہیں تو ان کے لیے شکر ادا کریں، ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے چیزوں میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ ناگزیر حالات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات حیران کن ہے کہ آپ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنی ہی تیزی سے وہ چیزیں ختم ہوتی دکھائی دیں گی جو آپ کے حق میں نہیں ہیں۔ میں تمام تر درجات پر ایسے بے شمار لمحات میں اس کا گواہ ہوں۔ اگر آپ خود کو اپنے سفر کے آغاز میں ہی دل سے شکر ادا کرنا سکھا دیتے ہیں اور آپ تمام سفر کے دوران اپنی شکر گزاری کو برقرار رکھتے ہیں، تو آپ اپنے سفر کو اتنا ہی آسان بنا لیں گے اور ہر طرح کی مشکلات حیرت انگیز طریقے سے کم ہو جائیں گی۔ شکر گزاری کے بنا آپ یہ موقع کھو دیں گے کہ کائنات آپ کی مدد کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرے اور آپ کو بالکل وہی لوگ اور حالات فراہم کرے جن کی آپ کو ضرورت ہے، تاکہ ایک جدائی انداز میں آپ کا خواب سچ ثابت ہو سکے۔ بلکہ اس کی بجائے آپ کے رستے میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، اور مزید برآں آپ اس خوشی کے احساس کو محسوس نہیں کر پائیں گے جو ایک شکر گزار دل سے ملتا ہے۔ مائنسٹین کپ، شکر گزاری کے متعلق سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو خود مرکزیت سے باہر لے آتی ہے۔ آپ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ خود کو ملنے والی نعمتوں پر توجہ رکھتے ہیں، آپ دوسروں تو لوگوں پر توجہ دیتے ہیں، اور بالآخر یہ وہی مقام ہے جہاں سے ہمیں لذتیں ملتی ہیں۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ اپنی ذات پر توجہ نہیں دیتے، یہ میری پریشانی ختم کر دیتا ہے۔